तो अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ी नामन, अब अगली आयतों में वजह है और आपको अभी इतनी जल्दी में नहीं समझ आएगा, डोंट वरी। लेकिन रब देखे, जहां भी कुरान में अभी तक हम गुजरे हैं, जहां मुसलमानों के लाइफस्टाइल की बात आई, उसके आगे यहूद और नसारा का जिक्र जरूर आता है कि यू आर इम्प्रेस्ड फ्रॉम देम, तुम्हें पता है कि वो नहीं पसंद करते तो तुम नहीं करते। आज आप देखिए कि मिसिज ओबामा जरा हिजाब तो पहन के देख लें, फिर देखिए हिजाब कितना प्यारा लगता है हमें, और हेलरी क्लिंटन और फुलां और फुलां, मिस मलका विक्टोरिया, आज अगर वो निकाब तो करके देखें हम पूछेंगे भी नहीं, नो क्वेश्चन एट ऑल, हम भी निकाब करेंगे। हम इस्लाम को जब दूसरों की ग्लासेस के साथ देखते हैं तो हमें चुभता है, और जब आप सोचिए कि एक ऐसा आ जाए कि आप सर पे, जो लड़की हिजाब करे जब हिजाब उतारेगी तो उसके सर पर एक ताज रखा जाएगा, फिर देखिए कितने हिजाब करते हैं। और अगर आज अल्लाह बता दे कि दीन के लिए निकलने वालों के हर कदम पर 100-100 डॉलर के नोट होंगे, फिर देखिए वॉलंटियर्स की लाइनें लग जाती हैं। आज इसलिए हमने करना है कि मैं अल्लाह से चाहिए यू मैनू न बिल गई, तो दुनिया के फवायद को सामने रख के लेंगे तो वो फिर अल्लाह से तो नहीं मिलेगा। तो अगली आयतों में अब तनकीद है अल्लाह की उम्मत वसत पर कि तुम हमेशा यहूद और नसारा से मुतासिर होकर अपने दीन के इतने बेसिक्स को छोड़ देते हो। कितना खूबसूरत दीन है, देखिए अपने आप को छुपाना फितरत के करीब है या अपने आप को दिखाना। और इस्लाम ने यह भी नहीं कहा कि सारा दिन छुपाते रहो, घर में भी, अंदर भी, बाहर भी, बाहर भी नहीं। अल्लाह ने कहा जहां जरूरत है वहां दिखाओ, जितनी जरूरत है उतना दिखाओ। बाप से कुछ और हद है तो शौहर से कुछ और है, तो क्या बाहर के मर्दों के पास जाकर तुम अपने आप को दिखाओगे? तुम्हें मिलेगा क्या उससे, और उनको तुमसे क्या मिलेगा? हसरतें बनेंगी, फिल्में बनेंगी, और इस तरह की दुनिया में खराबियां पैदा होंगी। तो अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन्नसारा औलिया, ए लोगों जो ईमान लाए हो यहूदी और ईसाइयों का अपना रफीक ना बनाओ, ये आपस में एक ही दूसरे के रफीक है। याद रखिए एक कॉमन थिंग है यहूद और नसारा के आपस में मिलने की, और वो है इस्लाम। सूरत हशर में हम आयत पढ़ेंगे तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता, तुम सोचते हो इनके दिल एक है हालांकि इनके दिल फटे हुए। आप तारीख खोल के देख लीजिए, यहूद नसारा की आपस की जंगों के हालात तो आप इन मुल्कों की हिस्ट्री में पढ़ लेंगे, स्लीबी जंगों को जाके पढ़ लीजिए, ये किनके बीच में थी? ये सिर्फ एक कॉमन गोल पर आपस में जुड़ते हैं और वो है कि किल द मुस्लिम्स, दैट्स इट। आप मुस्लिम्स को निकाल दें, इनकी आपस में बहुत सारी लड़ाई है। अल्लाह ताला कहते हैं तुम उनको दोस्त ना बनाओ, ये तो आपस में एक दूसरे के होंगे एक हद तक, और अगर तुम में से कोई इनको अपना रफीक बनाता है तो इसका शुमार फिर इन्हीं में है। यकीनन अल्लाह जालिमों को अपनी रहनुमाई से महरूम कर देता है। अब यहाँ ये मौजूद 2-3 दफा गुजर चुका, तो अब फर्ज बनता है मेरा कि मैं आपको गाइड करूं, चूंकि हम वेस्ट में रहते हैं और ना भी रहते हूँ, जो आज अपने मुल्कों में वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सैर अब छुट्टियां मनाने के लिए बाहर ही आते हैं, और उनके भी वर्ल्ड टूर्स आम है और कारोबारी बातें, तो ये नहीं हो सकता कि आज के दौर में मुस्लिम्स का कहीं भी नॉन मुस्लिम के साथ इंट्रेक्शन ना हो। तो क्या किस हद तक क्या हम इनसे बात नहीं कर सकते, क्या हम इनके हाथ से खा नहीं सकते, दिस एंड दैट? तो देखिए ताल्लुकात के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, देर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द रिलेशनशिप्स। एक अरबी में कहते हैं मदारात, मदारात क्या होता है? खातर मदारत करना उर्दू में, जिस आप उनसे अच्छे वो आपके घर आए, आप उनकी खातर करते हैं, आप करें, आप ज्यूस की भी कर सकते हैं, क्रिश्चियन, कुफार, साबी, जो किसी रिलीजन को भी नहीं मानते एथियस्ट, आप उसके साथ ये ताल्लुक रखें, आप अपनी नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स को आप उनके साथ मिलें, खिलाएं पिलाएं, उनकी करें, नो प्रॉब्लम। इसी तरह एक दूसरा ताल्लुक होता है जिसको मामलात कहते हैं, डीलिंग्स के नाम पर इंग्लिश में। डीलिंग कैसे होती है? जैसे आप उनके स्टोर से कुछ खरीद रहे हैं, वो आपकी दुकानों से कुछ खरीद रहे हैं, आप उनके मुल्कों में रहते हैं, वो नो प्रॉब्लम, वी कैन डू इट। फिर एक तीसरा दर्जा होता है मवासात, अरबी में मवासात कहते हैं हमदर्दी को, पिटी फीलिंग। आप किसी नॉन मुस्लिम को बीमार देखते हैं, परेशान देखते हैं, दुखी देखते हैं, आप उनका मसला हल करें, आप उनकी मदद करें, नीडी हैं, होमलेस हैं, आप उनको दीजिए, नो एट प्रॉब्लम। ओनली एक आखिरी दर्जा जिसको बार बार कुरान डील करता है, और वो क्या है कि इनके साथ विलायत, दिली रास, हम रास बनना, इनके इन्फ्लुएंस में आना, ये नहीं जायज। तुम इनके ऊपर अपना असर छोड़ो ना कि तुम इनका असर ले लो, इसमें भी तुम्हें केयरफुल रहना होगा। देखिए हम चंद रंगों के कपड़े इकट्ठे धोते हुए भी डरते हैं, एक कपड़े का रंग अगर छूटेगा ना तो आपके बड़े खूबसूरत हसीन कपड़े खराब कर देगा, ऐसे ही है ना। आप इमेजिन कीजिए कि इस्लाम, कुफर, ज्यूइज्म, क्रिश्चियनिटी, ये चार रंगों के कपड़े हैं, जब आप चारों को इकट्ठे मशीन में डालेंगे तो किसका रंग किस पे चढ़ेगा? जो स्ट्रांग होगा। हम मुसलमान स्ट्रांग बन जाएं, आप मिलिए जहां मर्जी जाएं, हराम ना खाएं उनका, उनको पहले बता दें डोंट ईट दिस दिस दिस, खाइए, लेकिन आप अपना रंग उन पे छोड़ कर आए। आज का मसला क्या है कि मुसलमान का अपना रंग ही कच्चा, दूसरों के रंग पक्के हैं। हम जरा सा मिलते हैं फिर हम कहते हैं नहीं, अब शेक हैंड तो करना ही पड़ेगा ना, बुरा लगता है, एक मर्द हाथ आगे बढ़े, सॉरी सॉरी नो। और अब मैं यहाँ बाया स्काफ हिजाब में जाऊं। मुझे कल किसी ने एक जुमला का, मुझे इतनी हैरत थी कि मेरे जहन में तो कभी ये क्वेश्चन ही नहीं आया। हम किसी चीज के लिए ऐसी बाहर थोड़ी देर के लिए उतरे तो उन्होंने कहा कि कोई आपको देखे तो आपको अजीब नहीं लग रहा था, या कोई गुजरा होगा मुझे देखा होगा, मुझे नहीं पता। मैंने कहा वल्लाह ही यहाँ बैठ के कहती हूँ, मैंने तो आज तक नहीं फील किया कि मैं बाहर कभी ग्रोसरीज में या कहीं एयरपोर्ट्स पे जाऊं तो कोई मुझे देखता भी है, और कोई मुझे अगर देखे कभी फील भी हो तो मैं उसको स्माइल दूंगी, मैं उसको सलाम करूंगी, तो मुझे तो नहीं बुरा लगता। वजह क्या कि मुझे यकीन है कि जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है। तो मेरे कदम तो उसी दिन लड़खड़ा देंगे जिसे मुझे लगेगा कि आई एम डूइंग टू मच। तो याद रखिए ये हमारा अपना माइंड थॉट होता है, आप जैसे सोचते हैं आपको वैसे ही लगता है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन जाहिलियत के तरीकों से बचाए और हमें इस्लाम पे फख्र दे। हमारा तो अपना इतना प्यारा कल्चर है, उम्मत वसत को तो अल्लाह ने एक ब्रांड नेम दिया है, नो वन कैन बीट दैट। देखिए हर एक ब्रांडेड चीजें नहीं ले सकता ना, रली मिली हर ढीली मिली सस्ती महंगी चीजें तो सब लेते हैं, इस्लाम इज अ कंप्लीट ब्रांड और उसकी कीमत कोई दे नहीं सकता। वो तो वही पहने और वही खाए और वही जाएगा जिसको उसकी कीमत देनी है। तो मैं तो इतना फख्र महसूस करती हूँ। बाज दफा आप देखिए एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, वेट कर रहे होते हैं, मैं जान के ऐसी वॉक थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं शुरू करती हूँ कि अल्लाह को मुझे इस हाल हुई है, मैं देखकर ये तो समझ जाए कि आज के दौर में हैं ऐसे मुसलमान जो इस तरह कर रहे हैं। अल्लाह मेरे ये चलना फिरना भी इबादत रख ले कि मैं लोगों को दिखाऊं कि अब इस्लाम बिल्कुल डिमोलिश नहीं हो गया और मुस्लिम आर नॉट फीलिंग पिटी और वो बहुत ज्यादा दुखी नहीं है और वो शर्मिंदा नहीं है अपने दीन पे। वी नीड टू बी प्राउडफुल। अगर आप यकीन करें किसी मुल्क की बात करती हूँ, ये हाल उलिया की बात बार बार क्यों आ जाती है कि हम इसी से तो दूसरों को दिखाएंगे ना। देखिए आपने, मैंने सुबह फजर की नमाज पढ़ी, कितने बाहर लोगों को पता है? मैं आ रहा फास्टिंग के, कितनों को पता है? नहीं पता। आप और मैं सदका खैरात करके आए, हमें किसी को नहीं पता। किस चीज से बाहर की दुनिया को पता चलता है? हमारा हाल हुलिये से। और बास लोग एक धोखा दे देते, कहते हैं हाल से क्या होता है, अंदर सही होना चाहिए। तो चलिए इसकी भी मिसाल दे देते हैं आपको। आप सब्जी वाले के पास जाते हैं, आपको कैप्सिकम खरीदनी थी, आप कहते हैं कैप्सिकम दिखाइए, तो वो आपके हाथ में भिंडी पकड़ा देता है, या वो आपके हाथ में कद्दू देता है, आप कहते हैं भाई क्या हुआ, वो कहता है कि ये ले जाए, वो कहते हैं नहीं अंदर से कैप्सिकम है, आप इसको खोलेंगी अंदर से कैप्सिकम है। आप कहते हैं मुझे टिंडे चाहिए, वो आपको कद्दू पकड़ा दे, वो कहते हैं अंदर से कद्दू है। डज इट मेक एनी सेंस? चलिए इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट कीजिए। आप कहते हैं कि गोभी दिखाइए, वो गोभी दिखाते, आप कहते हैं ये बासी लग रही है, वो कहते नहीं अंदर से बड़ी फ्रेश है। अंदर से फ्रेश हो सकती है अगर बाहर से पुरानी है? तो मुस्लिम अंदर से फ्रेश होगा ना तो बाहर से भी फ्रेश होगा। अंदर बीमारी होती है ना, रंग पीला हो जाता है, अंदर सेहत होती है ना तो चेहरा खिला रहता है। मोमिन तो दुनिया में चलता फिरता अल्लाह का एक मौजजा होता है कि देखो मैं अंदर से कितना खुश हूं, मेरी तो हंसी नहीं खत्म हो रही, मैं देखो कितना खुश हूं अपने अल्लाह के दीन के ऊपर अमल करके। तुम मेरे ऊपर क्यों हैरत करते हो, तुम कितने सिक्योर हो? यानी इस तरह की खूबसूरत बातें मुझे एक याद आ गई। एक दफा हम किसी जुम्मे के लिए नमाज पे गए तो बाहर पुलिस वुमेन खड़ी थी, जो उस दौर में कुछ ऐसे इश्यूज चले थे कि उन्होंने मस्जिदों को प्रोटेक्शन के लिए जुम्मे के बाद पुलिस वाले दिए। तो लेडी थी, मैंने उसको देखा दूर से, तो मैं मंदिर से गई और एक ऐसी कैन वगैरह लेके कुछ उसके स्नैक्स लेके मैं उसके पास चली गई। अब उसका चेहरा तप रहा था धूप से, बेचारी शदीद गर्मी थी, ह्यूस्टन की गर्मी आप सब जानते ही होंगे जो पास था पड़ा। किस्सा मुख्तसर, तो मैंने उसको दिया, वो थैंक यू बहुत खुशी ना, तो मैंने उससे बात करनी शुरू कर दी। वो खड़ी थी वही जुम्मे के बाद की बात है, मुझे कहने लगी यू डोंट फील हॉट। मैंने निकाब किया हुआ था तो मैंने कहा नो लुक एट दिस, मैंने उसका हाथ पकड़ के ना अपने निकाब के अंदर ऐसे किया ना, कहती यह इट फील कोल्ड, तो कहती इज सम स्पेशल काइंड ऑफ क्लॉथ। तो मैंने उसको कहा आई फील पिटी, योर फेस इज बिकमिंग रेड, ये तुम इतनी धूप, कहती या दैट आई डिडंट थिंक, वो धूप में जो खड़ी थी। तो मैंने उसको क्या एहसास दिया कि अगर तुम्हारे चेहरे पर यह कपड़ा होता तो तुम्हें सूरज की रोशनी ना पड़ती। कहती ओके दिस इज सम स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेस, क्यों? मैंने कहा क्यों? कहती I am here from more than 1 hour. I saw too many women. They were going in the masjid, but no one was wearing this. Are you priest of this masjid? Are you this? कहीं उसने शायद सर को भी देख लिया। कहती I saw man with a different getup. I think so. You are the priest of this masjid. मैं कहा no. In Islam there is no different dress code for the priest and the ordinary. Really? Why they don't this? मैं कहा don't worry. Don't worry. This is different steps and everyone has their own faith. And don't worry. But just you need to be careful about la ilaha illallah. फिर मैंने उसको अल्लाह की तरफ डाल दिया। कभी कोई आपसे लिबास हिजाब औरत चार शादियां हजरत आयशा की शादी फुला बात करे दो चार जुमलों में खूबसूरती तौर से पलट के ला इलाहा इल्लल्लाह पिले। ये बात तुम्हें उस दिन समझ आएगी जब तुम्हें इलाह समझ आएगा। अल्लाह की बात उसको समझ आती है जिसको अल्लाह समझ आए। हमें तो अभी खुद नहीं समझ आया, सच्ची जो बात है। हमारा बॉस हमें कुछ कह दे फिर देखिए हमारे हाथ कांपते हैं, हमारा शौहर कुछ कह दे चलो उस गरीब की कुछ ना कुछ तो मान ही लेते हैं, लेकिन जिसको हम कुछ समझे ना, आप अपनी मेड की बात मानती हैं? आप कहते हो तुम कौन होती है मुझे डिक्टेशन देने वाली? تو یاد رکھیے آج ہم مسلمانوں میں سے کچھ نے اللہ کو کہہ دیا کہ اللہ ہو آر یو، بس تو رب بہت ہے، بہت اچھا ہے، بادل ہوا پریشانی، یو آر ناٹ ڈکٹیٹر، آپ ہمیں ڈکٹیشن نہیں دے سکتے، وی ول ناٹ ڈکٹیشن فرام یو بیکاز وی ہیو ٹو مینی لارڈس ان دس ورلڈ کہ وی آر ٹیکنگ ڈکٹیشن فرام دیم. جب اللہ سے ڈکٹیشن لیں گے آپ کا دل بتائے گا سچ کیا. کتنی آسانیاں، کتنی سہولتیں اسلام پہ آنے کے بعد، یہ تو جتنا آپ اس کی چھاؤں میں آتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے. ایک شخص گاڑی میں بیٹھ کے اپنی فرنٹ لائٹ سے دیکھ رہا ہے، اس کو وہ لائٹ راستہ دکھاتی ہے، ایک اپوزٹ وے سے آتا ہے تو اس کو وہ لائٹ آنکھوں میں پڑتی ہے. جب آپ اسلام پہ عمل کر کے اسلام کی گاڑی میں بیٹھ کر اسلام کے لاز اور رول اور ریگولیشن کو دیکھتے ہیں، اٹ ول گائڈ یو، آپ کو مزہ آئے گا. اندھیروں میں لوگ ہیں، میں روشنی میں ہوں، اور آپ اگر اسلام سے اپوزٹ ہوں، ہمارا مسئلہ یہ جی ہے، ہم پہلے اسلام کو کورٹ میں کھڑا کرتے ہیں، کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں ایز اے مجرم، پھر اس پہ یوں 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 ہاتھ ڈال کے ہم کہتے ہیں کلیمے تم نے یوں کیا، یہ کیا، تم بہت ایسے ہو، غیر مہذب ہو، پھر تو اسلام بےچارا روئے گا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آج ہمیں اسلام کی قدر کی توفیق دے، ورنہ یہ بہت بڑا سائن ہوتا ہے. جب مسلم خود اپنے دین پہ شرمندہ ہوتے ہیں تو دوسرے دشمن ان کے سینوں پہ دوڑتے ہیں. اسی لیے اب اگلی آیتوں میں دیکھیے گا اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ہی خوبصورت میسج دیں گے. چند آیتوں کے بعد ایک بہت خوبصورت آیت آنے والی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فطر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم، تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر وعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا. تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے نادم ہو جائیں گے. ویقول الذین آمنوا أهؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام اور نامراد ہوں گے. دیکھیے کتنی زبردست ڈانٹ ہے ان مسلمز کو کہ جو نام سے کہتے ہیں اللہ کی باتیں مانیں گے، لیکن جب وقت آیا تو انہوں نے اسلام کو کچھ نہ دیا. آیت 54 اور اس سے اگلی آیتیں ہمارے اس بارے کی آیات تدبر ہے. یقین کرے جس نے یہ آیتیں ایک دفعہ پڑھ لی اس کو پھر اپنی اوقات بھی نظر آ جائے گی، اور پھر وہ اللہ کے دین کو ایک بوجھ نہیں بلکہ ایک آنر سمجھے گا. آئیے دیکھتے ہیں جو بھی ممکن ہے اس وقت میں، لیکن انشاءاللہ اس کی تفسیر آپ کو ہم بھیجیں گے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ ڈونٹ کیئر. دیکھیں ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت کوئی نہیں ہے. پھرتے ہو تو پھر جاؤ. یو وانٹ ٹو لیو دا اسلام، چھوڑ دیجیے. تم صرف لپ سروس کا نام اسلام دیتے ہو تو اللہ کہتا ہے تم زبان سے بھی چھوڑ دو تو آئی ڈونٹ مائنڈ. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اور آپ کی ووٹوں کے ساتھ دنیا میں نہیں ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم اس کو مانیں گے تو وہ اس کا کچھ کام ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا. اللہ کہتا ہے چھوڑ دو. آپ بتائیے یہ بات کون کس کو کہتا ہے؟ آپ اس بات کی ذرا شدت محسوس کرے. ماں غصے میں بھری بچے کو کہتی ہے چھوڑ دو گھر، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جاؤ جہاں جاتی ہو چلی جاؤ، میں تمہاری بات نہیں مانتی، جاؤ خود چلی دو. یہ کب ہوگا؟ غصے کی شدت. عام حالات میں مائیں اس ٹون میں بات ہی نہیں کرتی جس ٹون میں اس وقت ہمیں اللہ کی یہ بات دکھ رہی ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیارا ہے. نخرے کرتے ہو، برا لگتا ہے اسلام، یو فیل offended, یو فیل threatened, جاؤ چلے جاؤ، آئی ڈونٹ لائک یو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تم سب چلے جاؤ، سب دین چھوڑ دو. اب تو لگا اللہ تعالیٰ تو بڑے غصے میں آ گئے. اب ہم سوچے اچھا جی ہم نکل کے دیکھتے ہیں، پھر پتا چلتا ہے اللہ کو کون پوچھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، تم نکلو گے، جگہ خالی ہوگی، یہ کرسیاں خالی ہوں گی، دنیا تم سے خالی ہوگی، اللہ ایسے اور لوگ پیدا کر دے گا. کیا ہوں گی ان کی خوبیاں؟ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے پیار کرے گا، وہ اللہ سے زیادہ پیار کریں گے دوسروں کی نسبت، اور اللہ بھی ان سے پیار کرے گا. اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وہ مومنوں پر نرم ہوں گے، آپس میں مسلمانوں کو کاٹ نہیں کھائیں گے. اور عزت علی الکافرین، اور کافروں پر سخت ہوں گے. وہ یہ جملہ نہیں بولیں گے کہ آج کے دور میں تو جی مسلمانوں سے کافر اچھے ہیں. کتنا کامن جملہ یہ جو ہم سنتے ہیں. یاد رکھیے کافر مومن سے کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. جس نے پیدا کرنے والے کو نہیں ماننا، اس کو نہیں پہچاننا، وہ دوسرے سے کیسا اچھا ہوگا؟ مسلمان بے عمل بھی ہو جائے نا تو وہ کافر سے اچھا ہے، کیونکہ وہ رب کو تو مانتا ہے. ایسے ہی جیسے ایک بچہ اپنی ماں کو ہی نہ مانے تو ساری دنیا کے ساتھ اچھا بنا پھرے تو اس کی کیا ویلیو ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مومنوں کے ساتھ محبت کریں گے. اور اگلی خوبی ان کی کیا ہوگی؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے، محنتیں کریں گے، उनकी जिद्दोजहद सिर्फ दुनिया को कमाने और पढ़ने और सीखने और उसी पे नहीं खत्म होगी, बल्कि ये सब आगे बढ़कर अल्लाह के रास्ते की मेहनतों में बदलेगी। और उनकी चौथी खूबी, वला यखाफून लौमत लाएं, और ये किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। वो कहेंगे हाय मैं यहां दुपट्टा सर पे लूं, लोग तो मलामत करेंगे। देखिए लफ्ज मलामत को समझ लीजिए, एक होती है मुखालफत, एक होती है मलामत। मुखालफत क्या होती है? अपोजिशन, दुश्मनों से आती है। मलामत के लामा लाइम से, ये अपनों से आती है। दुश्मन आपकी मुखालफत करेगा, यू आर रेडी फॉर दैट। आप कहते हैं हाँ ये दुश्मन है, ये मुखालफत तो करेगा। जो ही मैंने कोई अच्छा काम शुरू किया, देखना इनकी मुखालफत के दरवाजे खुल जाएंगे। अच्छा जी, और मलामत कैसे होती है? अपने बेटा क्या हो गया, मासी लग रही हो, उम्र से 10 साल बड़ी लग रही हो, ये क्या हो गया, ये कुरान पढ़ने बैठ गई, ओवर वेट हो गई हो, ये तुम किन कामों में पड़ गई, शौहर तुम्हारा दूसरी शादी कर लेगा, ये क्या अम्मा बनती फिरती हो, उतारो हिजाब, तुम्हें नहीं पता बाहर कैसे हालात हैं, कोई पकड़ लेगा एयरपोर्ट पे रोक लोगे। ये है मलामत। मलामत अपनों से होती है और ये डेंजरस होती है। यकीन कीजिए आज का मुसलमान बाहर की मुखालफत इतनी नहीं सुन रहा जितनी अपनों की मलामत है। मैं आपको सिर्फ एक शऊर दिलाने के लिए पूछ सकती हूँ, क्या हम बाहर जाएं तो नॉन मुस्लिम हमारे हाल हुलिये पे ज्यादा डिस्कशन करते हैं और हमें देखते हैं कि हमारे अपने लोग? बाहर वाले तो परवाह भी नहीं करते, यहाँ तो आदत ही नहीं लोगों को देखने की, वो तो इधर से उधर मुंह कर लेंगे। और जो आपको ऑनर इस्लामिक अटायर में बाहर मिलती है, आजमा के देखिए क्या गोरे क्या लड़के क्या मर्द क्या औरतें, वो आपको इस तरह कहते हैं जैसे आप फ्रजल हैं। आपकी वो इन्वेस्टिगेटर्स जो आपको एयरपोर्ट्स पे इजाजत देनी होती है, वो आपको यूं पकड़ने से पहले पूछती हैं, कैन यू टच योर फिंगर प्लीज, यू वांट टू गो इनसाइड, आई वांट टू जस्ट टेक अ लुक। ऐसा प्यार करते हैं, ऐसे लगता है सबसे ज्यादा मजा आता है उस वक्त हिजाब करने का और अबाया करने का और निकाब का। इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार, ये मैं आपको सच बता रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। अल्लाह कभी आगे भी ना करे, आज तक मेरा ख्याल है कि अगर मैं अपने पिछले 15 साल के माइलेज जमा कर लूँ ना, तो आप सबके माइलेज से ज्यादा होंगे, इल्ला माशाल्लाह। जितने मुल्क जितने ट्रैवलिंग जहाँ गई, ऐसे ही गई हूँ जहां जैसे आप देखेंगे, यहाँ तो बिल भी रिलैक्स होके आते हैं कि हम अंदर आए गाड़ी से उतरे इधर आ गए, बाहर जाने का सीधा साधा कई साल पुराना अबाया वही हिजाब कि जिसमें बिल्कुल आप सीधे साधे हाल में रिलैक्स सफर करें। आज तक कुछ नहीं हुआ। इतनी रिस्पेक्ट, इतनी मोहब्बत, ये बातें मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ कि कॉन्फिडेंस आए आप में। मत सोचिए मैं सिर्फ वहां पैन ओढ़ के बैठूंगी जहां कोई मुझे जानता है, जिनकी मेरी नजर में इज्जत है, वो जगह जिनको मैं पसंद करूं, वो मौके जिससे मैं चाहूं, मुझे उनकी खुशी है। और मैं बाहर इश्तेहार बन के कि फिर साहब मुझे देख जाए, मैं सज रही हूं अच्छी लग रही हूं, मुझे क्या मिला, आई डोंट केयर। इसके बरक्स आप अपनों में, आज भी मुझे वो वक्त याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम, जवानी का वक्त आ गया उस दिन में अर्ली डिनर के, जब फर्स्ट शरई पर्दा किया जिसमें फैमिली के लोगों से भी शुरू किया, वो शादी मुझे आज तक नहीं भूली जो कराची के पीसी होटल में थी। हमारी अपनी फैमिली में किसी का दूर पर वलीमा था, मैंने शरई हिजाब के बाद पहली दफा वहां जाना था। गाड़ी से लेकर पूल साइड से गुजरने तक मुझे अपना एक एक कदम मन मन भर का लग रहा था कि मैं निकाब से गुजर रही हूं, कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि मैंने शुरू कर दिया। वो कदम मुझे आज तक नहीं भूले। हमारी तो अपनों की नजरें बहुत है, वो कमेंट देंगे ये क्या होगा, निंजा बन गए, चेहरे पे कुछ निकल आया, बड़े बन गए, ये हो गया। अरे कुछ नहीं होता, पर्दा तो दिल का, अल्लाह ना करे पर्दा दिल पे पड़े, दिल पे पर्दा पड़ता है अल्लाह कहते तब अल्लाह वाला कुलूबिम, पिछले बारे में पढ़ चुके हैं, फिर तो नेकियां और मुश्किल लगती हैं। तो याद रखिए कि बाहर मुसलमान बन के दिखाए। मैं कहती हूँ ये मेरा मौजू हिजाब नहीं है इस वक्त, निकाब नहीं है, मैंने कभी इस मौजू पर डिटेल से बात नहीं की जहां आयते आती हैं, लेकिन इस साल जो दौरे कुरान है वो बता रहा है कि बाहर लोगों को मुस्लिम बन के दिखाओ। चले बाहर नमाजें पढ़ने का अगर मौका नहीं है, आप मुस्लिम बन के तो दिखाएं। सिर्फ इस सोच से अगर इस साल हम अपने हाल हुलिये पे गौर करें, सिर्फ अल्लाह तुझे और लोगों को दिखाने के लिए कि वी आर प्राउड मुस्लिम, फैशन बना दें ना, नेकी की नीयत करें ना, करें अंदर ना, अपनों में करें, अपने मुल्कों में जाएं बिल्कुल ना करें, आई डोंट केयर, आई डोंट, सऊदी अरब जाएं बिल्कुल ना करें, लेकिन हाल जब इससे उलट हो, एयरपोर्टों में हाल होलिए बदल जाए, जहाजों में बैठते ही अंदर कोई और जाए, जब अपने मुल्कों में निकले तो हाल होलियो, तो ऐसे मुसलमानों से क्या लोग डरेंगे? अल्लाह कहते जाते हो तो जो रियली आज प्रैक्टिकली मुसलमानों की अक्सरियत निकल चुकी है इस्लाम के पाबंदियों से। अल्लाह सिर्फ नमाज रोजे से नहीं खुश होता, वो तो एक किस्म का ट्रेनिंग सेशन होता है। एवरी डे हम सुबह अल्लाह तला को 2-4 मिनट में हाजिरी लगवा कर आते हैं कि अल्लाह स्टिल आए मुस्लिम, या का ना बुदू या का नस्ते। असल चीज जो नमाज में हम अल्लाह से रोज लेके आते हैं, दिन सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह प्लीज शो मी द राइट पाथ। आज मैंने जहां जहां जाना है वहां मैं कैसे जाऊं? अल्लाह आज मैंने जो जो खाना है क्या खाऊं, अल्लाह आज मैं निकल रहा हूं कारोबार पे, मर्द हूं, बच्चों के लिए मजदूरी करने जा रहा हूं, अल्लाह तू बता क्या हलाल क्या हराम क्या करूं। हर बच्चा अपने हिसाब से अहदिना सिरातल मुस्तकीम में अल्लाह से गाइडलाइन लेता है। हर यंग बच्ची, हर यंग बच्चा, हर छोटा बड़ा सुबह अल्लाह से फजर में पूछ के आता है, अल्लाह आज का पूरा दिन कैसे गुजारूं। तो जब वो पूछने वाला कहीं और खाता पड़ा हुआ है, करने वाला कहीं और है, तो कितने दिन आपको उस जॉब में आपका मालिक रखेगा? सुबह आते ही आप कहेंगे शो मी माई ड्यूटी लिस्ट, आप वर्कर्स को देते हैं ना, एवरी डे का डे प्लानर है, आज आपने ये करना है, बड़े तपाक से वो आपसे ले, और एंड ऑफ द डे जब देखे तो उसमें कुछ भी नहीं किया। वाय, क्यों नहीं किया? क्योंकि अच्छा ये करना भी था। वो कहेंगे जी आपको इधर पे किए पर आवर, आपने ये पढ़ाना था, ये करना था, फिर आप हमें रिपोर्ट देकर जाएं। अपनी मर्जियां करने वालों को कितने दिन कोई रखता है? तो अल्लाह ने अगर ये कह दिया मैयर तदम इनको मान दी नहीं फसो फयात इल्लाहु भी कौमें, तो जो कि काउंट ले ऑफ कर रहे अल्लाह, इसमें आप इसकी शिद्दत को महसूस करें। यकीन करिए मेरी बातें कोई जज्बाती नहीं है, ना मुझे कोई गुस्सा आया हुआ, लेकिन ये वो मोहब्बत और वो ग्रज और वो जिम्मेदारी का एहसास है जो आज पूरे ग्लोब पे मुसलमानों के सर पे मंडला रहा है। आज रात को बैठ के तन्हाई में अल्लाह से पूछें, अल्लाह बता स्टिल आई एम इन योर लिस्ट ऑफ इस्लाम। हदीस में आता है कई लोग हैं दुनिया में इस हाल में, अल्लाह के हाँ जब जाएंगे क्यामत के दिन वो किसी और दिन पे उठेंगे। बेनमाजी का हशर हदीस में आता है कि कारून और हारमान और शद्दाद जैसे लोगों में होगा, बेनमाजी फिरौन के साथ होगा। कितना जबरदस्त इस वक्त टॉर्चर हमें लेने की जरूरत है अपने दिल पर कि पता चले ये रोजे नमाजें इफ्तारियां खाने पीने सब रह गई। अल्लाह कहता है तुम्हारा नाम कट चुका है, ये अल्लाह नाम काट रहा है मेरा और आपका। अल्लाह ना करे हम में से किसी का ऐसा हो, लेकिन आज उम्मत की अक्सरियत का हाल देखिए, किसी जगह से वेवलेंथ नहीं मिलती इस्लाम के साथ। मुसलमानों को काट खाने वाले, उनसे नफरत करने वाले और दूसरों की गोद में बैठने वाले, हाँ ये है असल, हाउ स्वीट दे आर, मना नहीं करते, जो मर्जी खाओ जो मर्जी पहनो। और ये मुल्लास और ये मुफ्तीज, और कभी जरा आप डोन तो देखे जरा पढ़े लिखे लोगों की जो वो मुस्लिम इस्लामिक लोगों और दीनदारों के लिए करते हैं, ये मुल्लास ये तालिबान ये पुला ये फनेटिक। देखिए हम अगर ये जुमले बोलेंगे तो गैरों को क्या जरूरत है इसको बोलने की? तो इसलिए हम सब अल्लाह से दुआ करें, और अल्लाह देखिए इस फीलिंग को अगर आपके अंदर ये आ गई है तो अल्लाह कहते हैं जालिक फजलुल्लाह, ये अल्लाह का फजल है क्या कि मुसलमान को इस बात का एहसास हो जाए। और अल्लाह हर एक को नहीं देता, जिसको वो चाहता है वो देता है, वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वुस्सत वाला भी और जानने वाला है। तुम भी वुस्सत कल्बी लाओ, तुम भी इल्म हासिल करो, इन्नमा वलीयुकुम अल्लाह व रसूलहू, इन्नमा वली, तुम्हारे रफीक तो हकीकत में सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल और अहले ईमान है, जो नमाज कायम करते जकात देते और अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं, और जो अल्लाह और उसके रसूल और अहले ईमान को अपना रफीक बना ले तो इसे मालूम हो कि अल्लाह की जमात ही गालिब रहने वाली है। ये आखिरी हिस्सा हाईलाइट करें, ये आपको और मुझे अल्लाह ने कितना प्यारा मशवरा दे दिया, तुम किसको दोस्त बनाते हो? तुम्हारा ख्याल है ये खुश हो जाएंगे? हम तो दुनिया कैसे से मुस्लिम मुल्क देखते हैं, उन्होंने अपनी टांगे नंगी कर ली, स्कर्ट्स पहन लिए, अपनी एयर होस्टेस को ऐसे खोल के पेश कर दिया, लेकिन आज तक वो यूएनओ में शामिल नहीं हो सके, आज तक यूनियन काउंसिल में वो शामिल नहीं हो सके, बिकॉज उनके नाम के साथ तो लफ्ज मुसलमान है। नाम नहीं ले रही मैं, लेकिन यूरोप पूरे के अंदर इस वक्त आपको पता है कि आपस में बहुत सारे समझौते हो चुके हैं, कहीं शंगन कंट्रीज हैं, कहीं आप देखते हैं तो यूके की फोर्सेज हैं, कहीं यूरोप है, एक मुसलमान मुल्क है, आप खुद जाके देख लीजिएगा, एड़ी छोटी का जोर लगा लिया उन्होंने कि हमें भी इसी में जमा कर लो, हमारी भी करेंसी यूरो बना दो, वो कहते हैं नहीं सॉरी, वो कहते हैं हम कपड़े उतार देंगे। मैं खुद उस मुल्क के काउंटर पे खड़ी थी और फजर का वक्त था और जहर की नमाज थी, और जो लड़की थी वो इस तरह थकी हुई थी, कहती मैंने रात से जॉब कर रही हूँ, मैंने कहा फजर का वक्त हुआ तुम पढ़ी? कहती आई कैंट, मेरी जॉब, आई विल लूज माई जॉब इफ आई विल लीव द काउंटर, मैंने कहा इवन फॉर सलाद? कहती यस। अब ये जिन मुसलमान मुल्कों में ये लॉज हो कि अल्लाह उनको खुशखबरियां देगा, फिर मार पड़ती है तो फिर हम चीखते हैं, फिर हम रोते हैं। तो आके अल्लाह कह रहे बस सिंपल बात है, जैसे आप अपने बच्चे को समझाती हैं कि बेटा देखो तुम्हारा दोस्त जो फुलां फुलां अहमद मोहम्मद अली अब्दुल्ला, दैट्स आर योर फ्रेंड, दैट्स इट, दूसरों को बनाओगे तो धोखा खाओगे। आज मुसलमानों का डिक्लाइन, जहां आज नहीं ये पिछले दौर की कहानी है, हिस्ट्री पढ़ के देख लें, जो मुल्क टूटा जहां मुसलमानों पे जवाल आया, पीछे नॉन मुस्लिम्स की मोहब्बतें थी। आप अपने बरेसगीर पाको हिंद की हिस्ट्री पढ़ के देख लीजिए जाके, जिसको बरेसगीर नहीं कहना चाहिए बरे कबीर कहना चाहिए। आप मुस्लिम जो पाकिस्तान के हैं या इंडिया के, आप तो हमारे तो मुंह पे ये बातें हुई हुई हैं, हमने तो अपनी आंखों से वो अहद देखी है, स्टिल यकीन करें आज हमें वह चारों तरफ दिख रही है। हम तो फेस कर रहे हैं उन चीजों को जो साहबा के एक महीने में खत्म हो गई थी। आप जाके देखिए जो खानदान डूबा उसमें कहीं ना कहीं हिंदू औरतों की मोहब्बत आ गई थी, और जो बादशाह शाही बादशाह और मुगलिया दौर के डिक्लाइन की वजूहत क्या थी। अब इन बातों को फैक्ट्स के साथ जब लेके सामने पेश करें हैरत गुम हो जाती है। जब मुसलमान अपने दीन पे शर्मिंदा हुआ, अल्लाह कहता है यरतद्द मिनकुम दीनी गोहट, अल्लाह ने गोहट दिया हुआ इस वक्त भी। नहीं समझेंगे मगन बने रहे, नो प्रॉब्लम, कुछ और साल जी लेंगे। और दिन ब दिन हालात मुश्किल हो रहे हैं। मत सोचिए 2015 को, सोचिए 2050 को, सोचिए 2060 को। हम नहीं होंगे, हमारे बच्चे तो होंगे ना, हमारे नवासे तो होंगे, उनके बच्चे तो होंगे। जिंदगी दोबर हो जाएगी अगर आज हमने स्टैंड ना लिया अपने दीन पे। याद रखिए हमारे बच्चों का जीना दोबर कर देंगे। पहले तो वो किसी एक छोटे से इशू को निशू बनाते थे ना, अब तो उन्होंने ये कह दिया, अगर घर में रात को बच्चे को आपने ये भी कह दिया कि होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट गुड, तो बच्चा सुबह स्कूल में आके शेयर कर देगा तो आपका बच्चा हम ले लेंगे और आपको किकआउट कर देंगे और यू डोंट हैव एनी राइट टू क्लेम अस। अब माँ बाप बच्चों को ये भी नहीं कह सकते, जिना तो छोड़ दीजिए, शादी से पहले के ताल्लुक छोड़ दें, अब ये नहीं कह सकते कि आप होमोसेक्सुअल ना बने, ये अच्छी चीज नहीं है। जिस पे पूरी पूरी कौमें तबाह की गई, कुरान इसकी कहानियां देता है, आज के वो कानून बन गए। आप हवाएं महसूस कीजिए, यकीन करें खुशियों के दिन अब नहीं है, मेहनत के दिन है, काम के दिन है। और अगर आज भी हम भोले बने रहे तो पानी सर से गुजर जाएगा, और कई जगहों पे तो गुजर गए, लेकिन अब होप है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें इस कुरान से जोड़ दे जो हमारे अंदर ईमान भरता है। इसीलिए आप देखिए अगली आयतों को बगैर किसी कमेंट के फिर सुना देती हूँ, इसमें आपको एक और भी नुक्ता खुद ब खुद समझ आ जाएगा। फरमाया कौन लोग, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ु दीनकुम हुज़वा, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे पेश रहले किताब में से जिन लोगों ने तुम्हारे दीन को मजाक और तफरीक का सामान बना लिया, इन्हें और दूसरे काफिरों को अपना दोस्त और रफीक न बनाओ। अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो, वो आपके दीन का मजाक उड़ाएं तो आप उनके साथ मोहब्बत कर भी तो कैसे सकते हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि मेरी आंखें खुल जाएं। आज हम मुसलमानों को वाकई जरूरत है इस बात की कि अपने आप को ले चलें। बाकी रह गई दीन का काम मैं नहीं करूंगी, आप नहीं करेंगे, अल्लाह फरिश्तों से करा लेगा। अगर मेरे और आपसे अगर दीन का काम नहीं होता, खुशी से छोड़ जाएं। बस लोग इतना रॉन्ग एटीट्यूड शो करते हैं, एक दिन क्या एक घंटे के नोटिस पे दीन का काम छोड़ देते हैं और कहते हैं सॉरी इससे ज्यादा नहीं कर सकते। वॉलंटियरली आए थे, वॉलंटियरली जा रहे हैं। तो अल्लाह को मेरी आपकी किसी की जरूरत नहीं है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इसके अंदर अपने लिए सच्चा कर दे। जो कोई कर रहा है या जो कोई करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसका अल्लाह नाला के साथ हिसाब होगा। और अल्लाह ताला हमें अपने दीन के लिए आज वॉलंटियर बना ले। ये वॉलंटियर ये 4-6 घंटों का नहीं होता जो मस्जिदों में खाना खिलाने के वक्त होता है या इधर स्कूलों में होता है या कुरान। मोमिन 24 घंटे का वॉलंटियर है। जब तक मैं और आप अपना नाम इस्लाम के कामों में मुस्तकिल बेसिस पे नहीं लिखाएं, सुबह मौका मिले सुबह, दोपहर को मौका मिले दोपहर को, शाम रात रात को भी उठाना पड़े तो उठा लो, कोई बड़ी बात नहीं है। सोने का क्या, फिर सो जाएंगे और कब्र में तो बहुत जाके सोना है। ये मिशनरी जील के साथ इस वक्त दुनिया में इल्म को फैलाने की जरूरत है। शायद उस महफिल में एक बंदा ऐसा हो कि जिसको आपकी बात से फायदा हो जाए, तो आपका वो आराम, आपको वो खुशी जो मिलेगी वो सोने से नहीं मिलेगी, खाने से नहीं मिलेगी। अब तो इमरजेंसी में खाएं, थोड़े में खाएं, जल्दी शावर लेके निकले, जल्दी जल्दी, क्योंकि काम बहुत है। अभी दुनिया में इतना काम पड़ा है और हम सो रहे हैं और हम इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉयमेंट का वक्त नहीं रहा। कभी फौजियों को खाते हुए देखें, वो सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे होते हैं। इस वक्त हमारे ऊपर वही हालात है। अल्लाह से दुआ है कि हमें इसकी समझ आ जाए। फरमाए वाइजा ना दे तुम इलासला, जब तुम नमाज के लिए अजान देते हो यानी मनादी करते हो तो वो इसका मजाक उड़ाते हैं और इससे खेलते हैं। इसकी वजह यह है कि वो अकल नहीं रखते। इनसे कहो अहले किताब, तुम जिस बात पर हमसे बिगड़े हो इसके सिवा और क्या है कि हम अल्लाह पर और उसके दीन की उस तालीम पर ईमान ले आए जो हमारी तरफ नाजिल हुई और हमसे पहले भी नाजिल हुई थी, और तुम में से अक्सर लोग फासिक हैं। फिर कहो क्या मैं इन लोगों की निशानदेही करूं जिनका इंजाम अल्लाह क्या फासिकों के इंजाम से बदतर है, और वो जिन पर अल्लाह ने लानत की, जिन पर इसका गजब टूटा, और जिसमें से बंदर और सुअर बनाए गए, और जिन्होंने ताहूत की बंदगी की, इनका दर्जा इससे भी बुरा है और वो सवा उस सबील से बहुत ज्यादा भटके हुए हैं। आप देखिए कि यहां आपने बंदर और सुअर बनाने की बात पढ़ी है, ये तो मारूफ है कि बनी इसराइल का एक गिरोह बंदर बनाया गया था, लेकिन आपको इन आयतों से पता चला कि हिस्ट्री में ऐसे लोग भी गुजरे जिनको सुअर बनाया गया। और अहदीस से इशारे मिलते हैं कि जब उम्मत मुस्लिमा में नाच गाने की कसरत होगी और इस तरह की कबाखते आम होंगी तो अल्लाह इनकी भी शक्ल मसख कर देगा। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। जब ये तुम लोगों के पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि कुफर लिए हुए आए थे और कुफर ही लिए हुए वापस गए, और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ दिलों में छुपाए हुए हैं। तुम देखते हो कि इनमें से बकसरत लोग गुनाह और ज्यादती के कामों में दौड़ धूप करते फिरते हैं और हराम के माल खाते हैं। बहुत बुरी हरकत हैं जो ये कर रहे हैं। क्यों? इनके उलमा और मशाइख इन्हें जुबान खोलने और हराम खाने से नहीं रोकते। इसको हाईलाइट कीजिए। आज के मजहबी तबके पर भी यही तनकीद है अल्लाह की। फिकी बातों में उम्मत को उलझा दिया, नमाज में हाथ कहाँ बांधो इस पे लड़ा दिया, औरत की नमाज मर्द की नमाज में क्या है इस पे उलझा दिया, कजाए उमरी जायज है कि नहीं उस पे लगा दिया, और लोग दिन ब दिन सूद में इंडल्ज है, दिन ब दिन गलत कामों में उस पे जुबान नहीं खोलते। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बनी इसराइल के जवाल की वजह क्या बनी, कि इनके उलमा लोगों को बुराई से रोकते, लेकिन जब लोग इनके रोकने पे ना रुकते तो शाम को इनके आलिम ये कहकर वही काम करने लगते कि अच्छा अब ये नहीं रुकते तो फिर हम यही काम कर लेते हैं। वही बात है कि इफ यू कैंट बीट देम ज्वाइन देम। आज क्या हम नहीं कहते अब क्या करें सभी ऐसे हैं फिर हमारी कौन सुनेगा। तो अल्लाह ताला ने तनकीद की है। याद रखिए पब्लिकली जो तबलीग हो ना, जैसे इस वक्त हम पढ़ रहे हैं या मस्जिदों में खुतबे हैं दर्स हैं, उसमें हमेशा वो इश्यूज खोलें जो आम पब्लिक के हों। रह गए फिकी इश्यूज उलमा के और मसलकों का इख्तलाफ, आप उसमें उलमा की मीटिंग्स बुलाएं, आप उलमा के सेमिनार्स रखें, उसमें मिलकर डिसाइड करें। जो स्कॉलर आज के दौर में इन फिकी इश्यू को पब्लिकली आम करके उम्मत को तोड़ रहा है वो सबसे बड़ा दुश्मन है। पब्लिक को चाहिए अपने अमल की फिक्र करें, और जो रह गई आपस की जंगें उसको अंदर में कर लें। देखिए ये कोई मैदान जंग थोड़ी है कि एक आलिम को कुर्सी मिल जाए तो वो दूसरे मसलक के खिलाफ बोलता रहे और दूसरे को मिले तो वो उसके खिलाफ हो। ये बहुत बड़ा एक अल्लाह ताला की तरफ से इशारा होता है कि अब इस उम्मत के टूटने का वक्त आ गया, इन्होंने खुद अपने आप को तोड़ दिया। तो बनी इसराइल में भी यही हुआ, और आज आप देखें तो कई हद तक हम अपने अंदर भी यही चीज देखते हैं। अल्लाह ताला हमें इसे महफूज रखे। अब एक गुस्ताखी, जिस कौम की हिस्ट्री पढ़े हैं इनकी तो आदत गुस्ताखी की थी, नबियों का मजाक, उनके जो पीछे एक वाक्य मैंने स्किप कर दिया था लेकिन मेरा लिए कहना ही पड़ेगा कि मदीना में एक शख्स था उसको अजान की आवाज से इतनी चिढ़ थी कि जब अजान में ये लफ्ज आते हैं ना कि अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह तो उस पे दिल के बोझ को खोल के क्या कहता कि झूठा जल के राख हुआ, झूठा जल के राख हुआ। देखिए तौहीन रिसालत है, आपको मुझे इसमें लेसन मिल रहा है। कल कोई हमारे नबी की तौहीन करे, कोई कार्टून बना दे, कोई आपका नाम बिगाड़ दे तो क्या करना है? आप सब्र कीजिए। वो शख्स अल्लाह के नबी का नाम सुन के अजान में ये काम करता था, ऊंची से बोलता था। एक रात क्या हुआ कि उसकी लौंडी ने जब चिराग रखा तो रात को बंद करना भूल गया, हवा चली, उसकी घर की या उसकी कुटिया को आग लगी और वो झूठा जल के खुद ही राख हो गया। उम्मत मुस्लिम अल्लाह के फैसलों का इंतजार तो करे, दिखाइए अल्लाह को कि अल्लाह हम वो हैं कि हमारे नबी के बारे में कोई कुछ करे। हम नहीं कर सकते, अभी हम उस दौर में नहीं, तू अल्लाह इनको खुद पूछ ले फिर देखिए। और हम अपनी नमाजें पढ़ते कोई नहीं, अपने हमारे काम में इतनी खराबियां, और हम ऐसे चंद छह जुमले बोल के सारी दुनिया के मुसलमानों को और तकलीफों में डलवा दें, ये हमारा अमल है। तो यहां अब उनका एक कड़वा जुमला है कि कुरान की जब आयत उतरी मंजल्लज़ी युक्रिदुल्लाह कर्दन हसना, कोई है जो अल्लाह को कर्ज हसन दे, पीछे भी इसका तस्करा हुआ था, तो उस पर यहूद में से एक शख्स था उसने बहुत ही गंदा जुमला बोला, अल्लाह ने वो जुमला भी पेश कर दिया। वकालतिल यहूद यदुल्लाहि मग़लूला, यहूदी कहते हैं अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, बांधे गए इनके हाथ, और लानत पड़ी इन पर इस बात की वजह से जो ये करते हैं। अल्लाह के हाथ तो कुशादा हैं, जिस तरह चाहता है खर्च करता है। कितनी जुरत है मालिक पे बात करना। हकीकत यह कि जो कलाम तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया वो इसमें बहुत सारे लोगों की सरकशी और बातिल परस्ती में उल्टे इजाफे का मूजिब बन गया, और इसकी पादाश में हमने इनके दरमियान क्यामत तक के लिए अदावत और दुश्मनी डाल दी। जब कभी यह जंग की आग भड़काते हैं तो अल्लाह इसको ठंडा कर देता है। ये जमीन में फसाद फैलाने की सही कर रहे हैं मगर अल्लाह फसाद बर्पा करने वालों को हरगिज पसंद नहीं करता। अगर इस सरकशी की बजाय ये अहले किताब ईमान ले आते। अब यहाँ आप जरा दर्द को महसूस कीजिएगा, اتنی لمبی فہرست ہے اس قوم کی خیانتوں کی اور نبی کو ستانے کی، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کاش ایمان لے آتے. جیسے اللہ نہیں چاہتے نا کہ لوگ کفر پہ مر جائیں، ایمان لے کے آئیں. اس رحمت مسلمہ کو بھی اسی کی خواہش کرنی چاہیے، مت لوگوں کو برا کہیں، ان کی غلط چیزوں کو ریپلیس کریں. اور اس کے لیے آپ کو مجھے خود اسلام کو عام کرنا پڑے گا. جتنا ہم اپنے ایمان پر خود آگے بڑھتے جائیں گے، اتنا انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ باقی چیزیں بھی درست ہوں گی. دیکھیے کل یہود نے جتنی سازشیں کی نبی کے خلاف، وقت سے پہلے اللہ نے ان کو کھول دیا، کچھ نہ کر سکے. حتیٰ کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی جان لینے کی کوشش کی، زہر ملا دیا ایک عورت نے آپ کے کھانے میں جس نے آپ کو دعوت پہ بلایا تھا. اللہ نے عین وقت پہ جبرائیل کو بھیج کر نبی کو کہا کہ آپ اس لقمے کو اگل دیں، آپ نہیں کھائیں گے. جب اللہ کل ان جنگوں کی کوششوں کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، تو کیا آج نہیں کر سکتا؟ آج بھی کر سکتا ہے. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اگر اس سرکشی کی بجائے اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے، تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے. کاش انہوں نے تورات و انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہیں. اس میں ایک اور کتاب کا اضافہ کریں، اگر قرآن کے بعد کوئی اور کتاب اترتی تو یہ جملہ کیسے ہوتا؟ میں پڑھنے کے لیے صرف بتاتی ہوں تاکہ آپ سمجھ سکے. کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور قرآن کو قائم کیا ہوتا. اللہ کا شکر کیجئے اس قرآن کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں ہے، ورنہ جو پول آج ہم دوسری قوموں کے سن رہے ہیں وہ ہمارے کھلنے تھے اس میں. اور اللہ اس کتاب کو نافذ کرنے والا بنا دے ہمیں. ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا. یہ ہائی لائٹ کریں. حدیث میں تو ایک حد کو نافذ کرنے سے کسی ملک میں 40 دن کی مسلسل بارش سے زیادہ خیر آتی ہے. ایک اللہ کا قانون کسی ملک میں ڈلے. یہ جو آج ہم نے اپنے ملکوں کو فاقہ زدگان قرار دے دیا اور ہم نے کہا مہنگائی بہت ہے اور بجلی نہیں اور پانی نہیں اور گیس نہیں، یہ سزا ہے اس بات کی کہ ہم نے قرآن کو نافذ نہیں کیا. ہم تو اس کو بات نہ کر سکے، اتنے سالوں میں بت پرستی تو چھوڑوا دی، ہم نے شرک تو آج بھی نہ چھڑایا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے، اور پھر ہمارے ملکوں کے اندر اللہ اتنی فراوانی کر دے کہ وہاں سے رزق بھی برسے اور پانی کی نعمتیں بھی ملے. اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ راس رو بھی ہیں، لیکن ان میں سے اکثریت سخت بدعمل ہے. کتنا اللہ کا انصاف ہے. آج بھی ایسے امت مسلمہ میں بہت اچھے اچھے انسان ہیں، ماشاءاللہ بامل بھی ہیں، اللہ نے ان کو سوچ بھی دی، لیکن اللہ کا فیصلہ کسی امت کے ساتھ اکثریت کی بنیاد پہ ہوتا ہے. میجورٹی کیا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا وہ لوگوں تک پہنچا دو، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا. اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے، یقین رکھو وہ کافروں کے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا. صاف کہہ دو کہ اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو. کتنی دفعہ یہ موضوع آ رہا ہے اس صورت میں؟ کم از کم 3 بار یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کرتے تم ان کتابوں کو قائم کرو. تو یہاں سے ہم اللہ کی مرضی کو سمجھیں کہ کتابیں اس لیے نہیں دی جاتی کہ ان کو چوما چاٹا جائے، بلکہ ان کو قائم کیا جائے. ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو. یقین جانو یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں، مسلمان ہوں یا یہودی، صابی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا. سورہ بقرہ میں اس کی ڈیٹیل گزر گئی، آیت 62 تھی غالباً. وہاں ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا تو کسی کو تو انہوں نے جھٹلا دیا، سوچیے، اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ ہی رونما نہ ہوگا. یعنی نبیوں کے قتل جیسا جرم کر کے بھی کہتے تھے وی آر سیکیورڈ، کچھ نہیں ہوگا، دیکھنا سب ٹھیک ہوگا. اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے. پھر اللہ نے ان کو معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے. اللہ ان کی سب حرکات کو دیکھتا رہتا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اندھا بہرا بننے سے ہمیں روک لے، محفوظ کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں. پھر فرمایا لقد کفر الذین قالوا، اب یہاں سے آگے نصارہ کے عقائد پہ تنقید ہے. یقیناً کفر کے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں ایک ہے، یعنی ٹرینیٹی، حالانکہ ایک اللہ کسی وقت کوئی خدا نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ان کو دردناک سزا دی جائے گی، پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں، بس ایک رسول تھے، ان سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے، ان کی ماں ایک راست باز عورت تھی۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، آج کی ماں کو بھی سچا ہونے کی ضرورت ہے۔ اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرائے جاتے ہیں۔ یہ کھانا کھانے کی بات کیوں ہی؟ یہ بھی ایک لوگوں کا مائنڈ پیٹرن ہوتا ہے کہ دین کی کام کرنے والے جو اپنے دور میں انبیاء کرام تھے، یا آج کوئی اور اس سے کم درجے کا کام کرے، لوگ سوچتے ہیں یہ انسان نہیں ہے، دے آر ناٹ ہیومن، دے آر سپر ہیومن، ان کو سونا نہیں پڑتا، کھانا نہیں پڑتا، اور بس یہ تو جی اللہ والے ہیں۔ یہ سوچ بھی بہت سارے لوگوں کو دین سے دور کرتی ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کا بیان کر دیا کہ وہ بھی کھاتے پیتے تھے، تو کھانا پینا اسلام کے خلاف نہیں ہے، یہ بشریت کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ وہ سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا اللہ ہی تو ہے۔ سوچیے، اللہ میری بھی جانتا ہے، اللہ میری بھی دعائیں سنتا ہے۔ کہو اہل کتاب اپنے دین میں ناحق قلوب نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بختوں کو گمراہ کیا اور سوا اس سبیل سے بھٹک گئے۔ یہاں جواب دیا گیا بنی نصارہ کے ڈکلائن کا۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مسلمان جو ہے وہ کرسچنز کو فالو کر رہے ہیں نا، اسی طرح کرسچنز نے گریکس کو فالو کیا تھا۔ یہ آیتیں اس میں ڈیٹیل میں ہم نے بہت پڑھا ہوا ہے، جب پڑھتے ہیں تفسیر میں، کہ ہم سوچتے ہیں نا کہ اللہ نے تو انجیل میں ایک رب کی بات کی تھی، جیزس واز ناٹ سن آف گاڈ، تو آج کرسچنز میں اتنا ڈکلائن کیسے آیا؟ تو اس کی وجہ گریکس تھے۔ جب کرسچنز کا انٹریکشن یونانیوں کے ساتھ ہوا تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ گریکس کے اندر ایسی میتھولوجیز بہت سی ہیں، خدا اور اس طرح سے اور پتہ نہیں کیا کچھ، تین چیزوں پہ دنیا قائم ہے۔ وہاں سے کرسچنز امپریس ہوئے اور انہوں نے فرسٹ ٹائم ٹرینیٹی پڑھی۔ ان آیتوں پہ ٹرینیٹی کی ہسٹری ہم پڑھتے ہیں تھوڑی بہت، تاکہ ہم دیکھیں کہ جب بھی کوئی مسلمان قوم پیگن کلچر سے امپریس ہوگی تو وہ اپنے دین میں بھی شرک لے آئے گی۔ فرمایا بنی اسرائیل میں جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کے برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ ہائی لائٹ کریں گے، کان لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جب مذہبی طبقہ لوگوں کو برائیوں پہ روکنا چھوڑتا ہے اللہ کی طرف سے زوال آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اب آپ برے کیوں بنے، اب آپ ان کو ایسے کیوں کہیں ویسے کیوں کہیں، تو بس اللہ کی پکڑ وہیں آنے لگتی ہے۔ برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں سے بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں، یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے، اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ ہمیشہ والے عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی، تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تم اہل ایمان کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور بے شک وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں یہ ریالٹی ہے، جتنے لوگ ریورٹ ہو کر اسلام کی طرف آ رہے ہیں ان میں میجورٹی کرسچنز کی ہے، کیونکہ نسبتاً ان کے دل نرم ہیں۔ اور دوسری قوموں کا ذکر کیا گیا، ہارڈلی کسی کے اسلام کی طرف آتے آپ کسی کو دیکھیں گے۔ تو یہ تھا چھٹا پارہ جس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے۔